सब लोग दोनों हाथ जोड़िए और मेरे पीछे दोहराइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल से, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वपदांतिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदः श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। सब लोग हाथ ऊपर कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है इस प्रथम कार्यक्रम में। तो कुछ समय के लिए हम चर्चा करेंगे भगवद गीता से और समझने का प्रयास करेंगे कि कितना मूल्यवान ये मनुष्य जीवन है और जिसका उपयोग किस प्रकार से हमें भगवान से अपना संबंध स्थापित करने के लिए करना चाहिए। तो शास्त्रों में वर्णन आता है, संसार विष वृक्षस्य हि आस्ते द्विफले अमृतोपमे। तो शास्त्र कहते हैं कि ये जो संसार सागर है, ये जो जगत है, ये जगत को क्या नाम दिया गया है? संसार। संसार का अर्थ है जहां चार चीजें अवेलेबल है। कौन सी चार चीजें हैं जिसका वर्णन भगवान भगवद गीता में करते हैं अपने परम मित्र अर्जुन को? तो वैसे देखा जाए तो अर्जुन को किसी भगवद गीता की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि भगवान कहते हैं भक्तों से में सखा चेती रहस्यम है तद उत्तमम। भगवान कहते हैं अर्जुन तुम तो मेरे भक्त हो और मेरे परम मित्र हो। तो यदि भगवान के वो भक्त हैं तो उनको गीता की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान क्या करते हैं, अर्जुन को माध्यम बनाते हैं और भगवद गीता का जो मूल्यवान संदेश है, उपदेश है, वह हमें प्रदान करते हैं। जिस प्रकार से घर में सास और बहू है, तो सास कभी अपने बहू को डायरेक्ट नहीं बोलती, वो अपने बेटी को बोलेगी तो बहू क्या हो जाती है, समझ जाती है कि ये मुझे बोल रही है। तो उसी प्रकार से भगवान ये जगत में जो जीव है, हमारे जैसे जो इस संसार सागर में है, उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए अपने भक्त को माध्यम बनाते हैं। जैसे मेरी आवाज आप तक पहुंचानी है तो इस माइक को मैंने माध्यम बनाया है जिसके द्वारा मेरी आवाज थोड़ी ऊंची आप तक पहुंच रही है। तो उसी प्रकार से भगवान अर्जुन को माध्यम बनाते हैं और भगवद गीता का जो ज्ञान है वो हमें प्रदान करते हैं। तो भगवद गीता क्या है? भगवद गीता एक ऐसा गीत है जो जीवन की सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर है, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये नहीं कह सकता कि मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। चाणक्य पंडित ने एक श्लोक बोला था जिसमें चाणक्य पंडित कहते हैं, चाणक्य विष्णु के महान भक्त थे, उन्होंने कई सारे श्लोकों की रचना की, उसमें वो एक सबसे पहले एक श्लोक लिखते हैं। वो कहते हैं कि का चिंता मम जीवने यदि हरि विश्वंबर गीयते।
कहते मैं अपने जीवन में चिंता क्यों करूं, यदि मैं हरि भगवान कृष्ण का गुणगान करना मैंने सीखा है अपने लाइफ में, तो मैं मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो कहते हैं संसार में व्यक्ति केवल चिंतित रहता है अपना भरण पोषण करने के लिए। उन्होंने कहा एक बच्चा जन्म लेता है माँ के गर्भ से, तो जन्म ग्रहण करने के पूर्व माँ के स्तनों में दूध नहीं होता, लेकिन जन्म बच्चे ने जन्म ग्रहण करने के बाद तुरंत दूध उनके स्तनों से आ जाता है उस बच्चे के लिए। तो कहते हैं छोटे से बालक की व्यवस्था भगवान ने की है जिसने अभी अभी जन्म लिया है, तो मैं ये जीवन पाकर क्यों इस चीजों के लिए इतना कठिन प्रयास और परिश्रम करता रहूं? मुझे तो केवल भगवान का गुणगान करना है और वही मेरा जीवन है। तो इस प्रकार से वो कहते हैं एक श्लोक में, कश्च सौख्ये कुले कश्च दोषे कुले नास्ति व्याधिना कोन पीड़िता कश्च सौख्ये निरंतरम। तीन चीजें वो बताते हैं। वो कहते हैं कि कश्च दोषे कुले नास्ति, ऐसा कौन सा घर है फैमिली है जिसमें दोष नहीं है, समस्याएं नहीं है। और वो कहते हैं कश्च सौख्ये निरंतरम, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको ढूंढ के निकालो कि वो हमेशा हमेशा के लिए सुखी है, कोई है ऐसा नहीं है। तो इसलिए भगवत गीता वो माध्यम है, वो ग्रंथ है जो भगवान ने हमें दिया है, जिसके जिसका यदि व्यक्ति आधार लेता है, जिसकी यदि सहायता लेता है, तो अपना जो दुखमय जीवन है उसको किसमें परिवर्तित कर सकता है, सुख में परिवर्तित कर सकता है। और इसलिए भगवत गीता है। कभी कभी व्यक्ति दुखी होता है तो क्या करता है, गाने कान में डालते रहते, गाने सुनूंगा थोड़ा सुख अनुभूति होगी। इसलिए गीता, गीता मीन्स क्या है, गीत है। और भगवत मीन्स क्या, भगवत का अर्थ है भगवान ने अपने परम मित्र अर्जुन के समस्याओं का समाधान करने के लिए एक ऐसा गीत गाया जो हजारों हजारों सालों तक लोग गा ही रहे हैं, और जो हजारों हजारों सालों तक लोगों के जीवन की समस्याओं का समाधान प्रदान कर रहा है। तो इसलिए भगवत गीता वो विज्ञान है जिसको एक व्यक्ति ने स्वीकार करना चाहिए। हाँ, जैसे जनरली हम कहते हैं कि जैसे आप किसी भी वस्तु को खरीदते हो दुकान से, तो आपको उसके साथ साथ एक मैनुअल पुस्तिका दी जाती है। मोबाइल खरीदे तो एक छोटा सा बुकलेट आता है, इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। उसी प्रकार से जब ये मनुष्य देह हमें मिला है, तो भगवान ने साथ साथ एक पुस्तिका भी पकड़ा दी, और वो पुस्तिका क्या है, भगवत गीता है। लेकिन यदि हम उस पुस्तिका का सहायता नहीं लेते हैं, मैनुअल बुक की सहायता नहीं लेते, तो फिर हमारे समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। इसलिए भगवान अत्यधिक चिंतित है, और वो इतने चिंतित है कि वो चाहते हैं कि ये जो जीव जगत में जो जीव है वो सुख और समाधान का जीवन यापन कर सके। इसलिए भगवान स्वयं इस जगत में आते हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं, ग्रंथ देते हैं, वृंदावन जैसे धाम देते हैं, भगवत नाम भगवत कथा भक्तों का संग आदि प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि वो परम हितेशी पिता है। गीता में भगवान कहते हैं अहम बीज प्रदा पिता। तो पिता कभी भी नहीं चाहता कि पुत्र के साथ कुछ अहित हो, वो हमेशा हितेशी होता है। तो उसी प्रकार से भगवान का वो मनोवृत्ति है, भगवान की ऐसी भावना है जिसके द्वारा भगवान हमेशा ये देखना चाहते हैं कि जो जीव उनका आश्रय ग्रहण करे, जिसके द्वारा वो सुख और समाधान का जो जीवन है वो यापन कर सकता है। लेकिन हम क्या है, हम ऐसे जीव हैं जो भगवान से अलग होकर सुखी होना चाहते हैं। जैसे कोई मछली है, वो जल से बाहर होकर, मछली को जल से बाहर कर दो और उसको कहो कि हे मछली, तुम्हें मैं पहनने के लिए अच्छा गॉगल दे देती हूँ, अच्छा खाने के लिए देती हूँ, अच्छा पहनने के लिए देती हूँ, सब कुछ उस मछली को दे दो, क्या मछली सुखी हो सकती है उससे? नहीं हो सकती। मछली का जीवन क्या है, पानी है। तो उसी प्रकार से हम बचपन से लेकर बुढ़ापे तक इसी प्रकार से मछली की भांति तड़प रहे हैं। इतनी तड़प है, हम जल को ढूंढ रहे हैं लेकिन जल हमारे बहुत नजदीक है लेकिन हम उसका सहारा नहीं लेते। जैसे कस्तूरी मृग होता है, कस्तूरी मृग सुना है ना नाम, एक हिरण जिसके नाभि में कस्तूरी सुगंध होती है, तो वो जो कस्तूरी मृग हिरण उसको ये सुगंध आती है और वो सोचता है कि ये सुगंध कहां से आ रही है। वो दौड़ता रहता है दूर दूर तक दौड़ता है। किसकी खोज में दौड़ता है? सुगंध की खोज में, कस्तूरी की खोज में। लेकिन दौड़ दौड़ के थक जाता है और मर जाता है, लेकिन ये समझ नहीं पाता कि वो जो सुगंध है वो उसके बहुत नजदीक है, उसके नाभि से आ रही है। तो उसी प्रकार से हमारा जीवन है, हम भी जन्म लेते हैं तब से एक चीज को ढूंढते हैं और वो खोज की चीज की है, सुख की। हाँ, वो सुख, वो चैन, वो शांति हम ढूंढते हैं जन्म से लेकर बुढ़ापे तक, लेकिन कभी भी हम उसको प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि हमारा जो तरीका है वो क्या है जीवन में, बहुत ही गलत है। जनरली व्यक्ति सोचता है धन आएगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा। लेकिन जितने धनी व्यक्ति हैं उनके पास जाकर पूछो क्या वो सुखी हैं, वो कहते नहीं है। अब सोचो जो गांव में रहता है उसकी आंखें शहर की ओर होती है कि दिल्ली में मेरा घर होगा, दिल्ली में रहूंगा तो सुखी रहूंगा। दिल्ली वाले परेशान है, ट्रैफिक, पॉल्यूशन, कितनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। लोग फरीदाबाद में रहता है नौकरी करने, वो उधर कहा अजय विभाग की तरफ चला जाता है, इस कोने से वहां तक जाता है, कितना कष्ट है। दिल्ली वाला सोचता है कि मैं यहां सुखी नहीं हूं, दुबई जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा। दुबई भी चला जाता है, वहां सेटल हो जाता है, वहां भी सुखी नहीं होता। मैं अमेरिका जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, अमेरिका भी पहुंच जाता है। अमेरिका वाले कहां जाना चाहते हैं, चंद्रमा पे जाना चाहते हैं। चंद्रमा में अभी लैंड बेची जा रही है, आप में से किसी को जाना हो तो हमारे धनवंतरी प्रभु पीछे खड़े हैं। मतलब अमेरिका वाले भी ऊपर जाना चाहते कि वहां सुख मिलेगा, और फाइनली चंद्रमा में जो गए हैं वो कहते हैं वापस चलो, नेचर की ओर चलो। हाँ, फार्म हाउस होना चाहिए, है ना, जहां जाके पेड़ पौधे, छोटा सा घर, जल, उसमें सुख ढूंढते हैं। तो सोचो ये जो हमारी यात्रा है, ये यात्रा कभी सुख प्राप्ति की खत्म होने वाली नहीं। एक यात्रा आएगी फिर जीवन में, अंतिम यात्रा, तब तक एक सुख ढूंढने की जो हमारी यात्रा है खत्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारा जो तरीका है वो गलत है। मछली और पानी, उसी प्रकार से जीव और भगवान। तो जीव जब भगवान से संबंध स्थापित करेगा तभी वो सुखी हो सकता है, अन्यथा वो मछली की भांति तड़पते रहेगा। कभी ये चीज में सुख ढूंढेगा, कभी उस चीज में सुख ढूंढेगा। अभी मोबाइल ही ले लो ना आजकल, हाँ, मोबाइल कंपनियों ने तो लोगों को पागल कर दिया है, एक के बाद एक ऐसे अलग अलग मॉडल्स आ रहे हैं। व्यक्ति सोचता है इससे सुखी नहीं हुआ, अपडेट मॉडल आएगा उससे सुखी हो जाऊंगा, दूसरे से सुखी हो जाऊंगा, तीसरे से सुखी हो जाऊंगा। तो इस संसार में हाँ पदार्थ आदि में सुख नहीं है क्योंकि हम इस शरीर से कभी सुखी नहीं हो सकते। हाँ, हमें क्या करना होगा कि जब तक हम अपने आप को भगवान से नहीं जोड़ते तब तक हम सुख की अनुभूति थोड़ी भी अपने जीवन में नहीं कर सकते। इसलिए शंकराचार्य ने एक श्लोक बोला, उसमें वो कहते हैं अंगम गलितम पलितम मुंडम दशना विहीनम जातम तुंडम। वो कहते हैं कि अंगम गलितम, व्यक्ति सुख की खोज में उसका शरीर बिल्कुल गल जाता है। सोचो जब वृद्धावस्था आती है तो ये चमड़ी क्या होती है, लटकने लगती है। अंगम गलितम पलितम मुंडम, कि जो सर है जो बालों से भरा रहता था लेकिन जब वृद्धावस्था आती है तो सर में बाल अपने आप क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, गिरने लगते हैं। दशना विहीनम जातम तुंडम, और दांत पूरा भरा रहता है दांतों से, लेकिन जब वृद्धावस्था आती है तो दांत क्या होने लगते हैं, गिरने लगते हैं। वृद्धा यावत ग्रहित्वा दंडम, तो वृद्धावस्था आती है तो व्यक्ति डंडे का सहारा लेता है, दो पांव से काम नहीं चलता, कितने पांव चाहिए उसे, और एक पांव चाहिए, और फिर वो कहते तथापि न मुंचति आशा पिंडम, इतना कुछ इस व्यक्ति के साथ शरीर के साथ हो गया है लेकिन फिर भी हृदय में ऐसी भावना है कि मैं सुखी होऊंगा, अभी भी टाइम है, कहता है अरे बाबा सर में बाल नहीं रहे, मुंह में दांत नहीं रहे, चमड़ी गल रही है, चलना नहीं आ रहा है, लेकिन वो क्या कहता है, अभी सुखी होऊंगा। तथापि न मुंचति आशा पिंडम, मतलब फिर भी उसे आशा है कि मैं सुखी होऊंगा। एक बार एक व्यक्ति साधु ऐसा भ्रमण कर ही रहा था, साधुओं का कुछ काम नहीं है, वो क्या है भ्रमण ही करते रहते हैं, जहां मर्जी जाओ, बहता पानी और रमता योगी, पानी जैसे बहता वैसे साधु मन घूमते रहते हैं। तो वैसे एक साधु घूमते घूमते ऐसे गया, किसी दुकान था, लाला जी बैठे थे अपने दुकान में, पूरी वृद्धावस्था हो गई थी, और लेकिन जो क्या कहते कैश काउंटर होता है ना, छोड़ने की इच्छा नहीं थी, बच्चे बड़े हो गए थे और बच्चे कह रहे थे पापा जाओ ना अभी जरा तीर्थ यात्रा करो, वृंदावन जाओ, काशी जाओ, रामेश्वर जाओ, इधर उधर जाओ, कब तक यहाँ गल्ले में बैठे रहते हो कैश काउंटर पर। कहते हैं पान चबा चबा के मुंह लाल हो गया था उसका, लेकिन वहां से निकलने की भावना नहीं थी, क्योंकि जिस प्रकार का जीवन जीता है ना व्यक्ति उसी में चिपक जाता है, अपने जीवन का जो प्रमुख लक्ष्य है उसको भूल जाता है कि क्यों मुझे ये मनुष्य शरीर मिला है, क्यों इस शरीर से मुझे क्या प्राप्त करना चाहिए, ये सब चीजें वो भूल जाता है। तो ये साधु बाय चांस उस दुकान के पास गया तो उसके दो तीन बेटे बैठे थे, उन्होंने कहा महाराज जी साधु जी आइए आइए आइए, कुछ आप उपदेश दे दीजिए। वो कहते उपदेश तो यही है, मनुष्य जीवन तो कभी भी खत्म होने वाला है, इसलिए भगवान का भजन आदि करना चाहिए। तो कहते देखिए हमारे जो पिताजी हैं इनको आप ले जाइए अपने साथ, यात्रा करवाइए, धाम अलग अलग स्थानों में जाइए। तो पिताजी जाने के लिए तैयार नहीं थे, मानो ये फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, हाँ चिपका हुआ है। तो हमारे साथ सबके साथ ऐसी स्थिति है, तो कैसे तो व्यक्ति तैयार हो गया, साधु उसे ले गए, पूरा भारत के तीर्थों का भ्रमण किया 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 सब जगह, देखा इसके अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है। साधु ने अपना सर ऐसे मार दिया, सर पे हाथ वापस लाके छोड़ दिया, कहा कि ये व्यक्ति है इसके हृदय में कोई बदल नहीं हो सकता, ये जैसे के तैसा ही रहेगा, तो इसको मैं छोड़ रहा हूं यहाँ। तो बच्चों ने कहा नहीं नहीं आखिरी बार फिर से एक बार ले जाइए, हाँ कुछ तो होगा, भगवान में मन लगेगा, अंतिम अवस्था आ रही है। तो वो कहते ठीक है आखिरी बार ले जाता हूं। तो वो गए तो एक स्थान घूमना रह गया था, काशी, कौन सा, काशी विश्वनाथ बनारस, गंगा स्नान करना वहां। तो गए तो गंगा स्नान करने के लिए जैसे उस साधु ने उस व्यक्ति को ले जा रहा था, तो काशी जो काशी में एक घाट है, तो जहां बहुत सारी चिताएं जलती है ना अंतिम संस्कार होते, तो वहां आग है हजारों साल पूर्व, वो फायर अभी तक जलती है जिससे अंतिम संस्कार किया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे दाह संस्कार हो रहे थे और सब जगह ऐसे ज्वाला जल रहे थे। तो ये साधु उस व्यक्ति को लेके वहां से जा रहा था, तो इस व्यक्ति ने देखा अरे इतना कुछ जल रहा है, तो वो व्यक्ति रोने लगा, क्या होने लगा, आंखों से आंसू आने लगे, साधु नाचने लगा, साधु कहने लगा मेरा जीवन धन्य हो गया, एक व्यक्ति का हृदय परिवर्तन कर दिया, मेरा जीवन क्या हो गया, एक व्यक्ति भक्त बन गया, हाँ अच्छा हो गया। वो नाचने लगा, फिर इसने पूछा महाशय बताओ तुम्हारे रोने का कारण क्या है। वो कह रहा था व्यक्ति क्या कहता है कि मैं इसलिए रो रहा हूं, मुझे यदि पहले से पता होता कि लकड़ी का इतना डिमांड है तो मैं कपड़े का बिजनेस नहीं करता। साधु ये सुन के मूर्छित होके क्या हो जाता है, गिर जाता है। तो मतलब व्यक्ति पूरा अंतिम स्थिति में भी आ जाए जीवन के, तो भी उसके हृदय में सुख सुखी होने की आशा है, वो फिर भी चाहता है। लेकिन भगवान भगवद गीता के 8वें अध्याय में कहते हैं, माम पेत्य पुनर्जन्म दुखालय अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धि परमांगता। भगवान कहते हैं कि ये जो संसार सागर है ये दुखों का आलय है। भगवान ने इस जगत को, जिस जगत के दो गुण बताए हैं, एक है दुखों से भरा हुआ स्थान और दूसरा है अशाश्वत, मतलब शाश्वत नहीं है। तो आप ऐसे स्थान में आए हो इस जगत में जो दुखों से भरा है, तो आप कैसे आप सोच सकते हो कि सुख मुझे प्राप्त हो सकता है? हाँ, तो इस प्रकार से व्यक्ति को अनुभव करना चाहिए कि ये जो जगत है हमारे रहने के लिए नहीं है। हाँ, हमारे रहने के लिए नहीं है ये स्थान। हम कुछ दिनों के क्या है, यहाँ अतिथि है। किराए का घर जैसे आप लेते हो कुछ सालों के लिए, कुछ महीनों के लिए, फिर एक दिन आपको क्या करना होता है, खाली करना होता है। इसलिए भगवान ये चीज गीता की शुरुआत में ही बोलते हैं। भगवान कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार से कपड़े पुराने हो जाते हैं तो व्यक्ति फेंक देता है, नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार से ये शरीर जब खराब हो जाता है, काम नहीं कर पाता, तो उसको क्या कहते हैं, त्यागना होता है वो शरीर को, उसको क्या कहते हैं, मृत्यु। क्या कहते हैं, मृत्यु, क्योंकि एक न एक दिन ये शरीर खराब होने वाला है। और इस शरीर को त्याग कर व्यक्ति दूसरा शरीर धारण करता है, उसको जन्म कहते हैं। तो इसलिए व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि ये स्थान हमारे रहने के लायक योग्य नहीं है, हम यहाँ के लिए नहीं बने हैं। तो इस संसार में व्यक्ति पूरा प्रयास करता है भौतिक संसाधनों को इकट्ठा करने का, और वो सोचता है कि मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन हमेशा हमें याद रखना चाहिए ये उदाहरण मछली का और पानी का, क्योंकि हम ये शरीर नहीं है। हाँ, हम कौन है, शरीर से अलग है, आत्मा है। हाँ, जिस प्रकार से किसी की मृत्यु हो जाती है तो लोग वहां रोते रहते हैं, अच्छा था चला गया, तो लेकिन पूछे कि अरे तुम्हारे पास ही सोया हुआ है, कहाँ चला गया? वास्तव में वो जो आत्मा उस शरीर में है, उस शरीर को छोड़ के क्या हो गया, चला गया है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। ये जो जीवात्मा है वो भगवान कहते हैं मेरा सनातन अंश है, और जो अंश है वो यदि अंशी की सेवा करेगा तभी वो सुखी हो सकता है। सोचो ये शरीर के सारे जो अंग है वो उसके पार्ट से अलग अलग, हाथ है, आंख है, नाक है, पांव है, उंगलियां हैं, आंखें हैं, तो यदि इन सबको बड़ा तंदुरुस्त सुखी होना होगा तो इनको किसकी सेवा करनी पड़ेगी, पेट की। किसकी सेवा, पेट की। यदि हाथ कहे कि मैं इतना दिन भर काम करता हूं, जब लड्डू आएगा तो मैं खुद ही खाऊंगा, आंखें कहेंगी कि मैं इतना काम करती हूं देखने का, लड्डू आ जाए मेरे सामने तो मैं खुद खाऊंगी, तो आंखें खा सकती है क्या उस लड्डू को, नहीं। यदि ये सारी इंद्रियां जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो यदि सेवा करेगी पेट की, तो सबको क्या मिलेगा, एनर्जी, शक्ति, सामर्थ्य, बल, सुख। उसी प्रकार से हम भगवान के अंश है, आत्मा परमात्मा का अंश है, तो वो यदि भगवान की सेवा करता है तो स्वाभाविक रूप से वो सुख और शांति अनुभव कर सकता है। तो इसी कारण से हम भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि ये ऐसा जगत है जो अशाश्वत है, परमानेंट नहीं है, लंबे समय के लिए नहीं है, ये जीवन अवधि भी लंबे समय के लिए नहीं है, कुछ समय के लिए है। लेकिन कुछ समय के लिए है, लेकिन हम क्या करते हैं, इस भौतिक जगत में सब कुछ एकत्रित करना चाहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि क्या करो, आप मेरी सेवा करने का प्रयास करो। जब आप मेरी सेवा में लगोगे तो स्वाभाविक रूप से आप इस जगत में होते हुए भी हाँ सुख और शांति अनुभव कर सकते हो। कौन ऐसा व्यक्ति है जो नहीं चाहता? कोई है ऐसा? नहीं है। हम सब लोग चाहते हैं सुख और शांतिमय जीवन, लेकिन हमें वो मार्ग या प्रोसेस पता नहीं है। इसलिए भगवद गीता वो ग्रंथ है जिसमें भगवान वो विधि बताते हैं। भगवान कहते हैं मन्मना भव मद भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मां मे वैशेषी युक्तम ते। भगवान कहते हैं मन्मना भव मद भक्तो, हे अर्जुन तुम आपका जो मन है वो मुझ में लगाओ, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। ये कठिन है? कितना सरल है। तो भगवान वास्तव में हमसे इस प्रकार से सेवा चाहते हैं। यदि हम भगवान की इस प्रकार से सेवा करते हैं तो स्वाभाविक रूप से भगवान को प्राप्त करना सरल हो जाता है। क्योंकि इस जगत का दूसरा नाम क्या है? प वर्ग, प फ ब भ म। प मीन्स परिश्रम, फ मीन्स परिश्रम करता है तो फेन आता है, झाग आता है, थक जाता है व्यक्ति। प फ ब, ब मीन्स बंधन, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि का बंधन है। कौन से चीज का बंधन है व्यक्ति को? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो भगवान गीता में कहते हैं इस संसार में जिस भी व्यक्ति ने जन्म लिया है वो इस बंधन से बंधा हुआ है, जन्म से बंधा हुआ है, वृद्धावस्था से बंधा हुआ है, बीमारियों से बंधा हुआ है और मृत्यु से बंधा हुआ है। कोई व्यक्ति कहेगा मुझे कोई बंधन नहीं है, मेरे जीवन में कोई कष्ट नहीं है। लेकिन आप उसे पूछो कि आप मरना चाहते हो, बूढ़ा होना चाहते हो, बीमार होना चाहते हो, कोई चाहता है? नहीं। तो भगवान कहते नहीं चाहते हो तो इसके लिए उपाय ढूंढो ना, पहले जानो कि ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी समस्याएं हैं। वृद्धावस्था का ही ले लो, कोई व्यक्ति बूढ़ा होना चाहता है अपने से? नहीं। व्यक्ति थोड़ा सा बाल सफेद होने लगे तो सारे लोग डाई करना शुरू कर देते हैं, अरे बूढ़ा नहीं होना है मुझे। लेकिन बुढ़ापा सबसे बड़ा कष्ट है। हाँ, व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो कोई उससे बात नहीं करना चाहता, कोई उसकी सुनना नहीं, घर वाले नहीं सुनते तो बाकी कौन सुनेगा। भागवतम में वर्णन आया है वृद्धावस्था का, जिसमें कहते कि वृद्धावस्था ऐसा जीवन है जिस प्रकार से बैल खेत में काम कर नहीं सकता तो किसान उसको क्या करता है? छोड़ देता है। तो उस प्रकार की स्थिति है। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति जो बुद्धिमान है उस व्यक्ति ने ये चीज देखनी चाहिए, अपने जीवन की जो वास्तविकता है, अज्ञान के अंधकार में नहीं रहना चाहिए, जीवन की वास्तविकता सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए और अनुभव करनी चाहिए भगवद गीता के माध्यम से, और फिर भगवान की ओर अग्रसर होने के लिए प्रयास करना चाहिए। हाँ, तभी फिर हमारा जो जीवन है वो सुंदर हो सकता है। इसलिए भगवान का जो धाम है उसका नाम है वैकुंठ। तो वैकुंठ का अर्थ क्या है कि जहां किसी भी प्रकार की क्या नहीं है, कुंठा नहीं है। वैक शब्द का अर्थ है नहीं और कुंठा में बहुत सारी समस्याएं। तो भगवान वैकुंठ नामक स्थान में निवास करते हैं जहां किसी भी प्रकार की कुंठा नहीं है। तो मनुष्य जीवन इसलिए हमें मिला है कि जिस जीवन का हम इस्तेमाल करें इस भौतिक भयावह संसार सागर से बाहर निकलने के लिए। और यदि व्यक्ति कोई भगवान की शरण ग्रहण नहीं करता तो फिर भगवान कहते मैं उसके पास आता हूं। यदि कोई व्यक्ति कहते हैं कि मैं भगवान का दर्शन नहीं करना चाहता, भगवान कहते मैं आता हूं उसे दर्शन देने। कौन से रूप में? मृत्यु सर्वहरश्याम। भगवान कहते मृत्यु के रूप में आता हूं और उसके पास जो भी चीजें हैं उसको हरण कर लेता हूं। तो इसलिए व्यक्ति को भगवद गीता के माध्यम से या भक्तों के माध्यम से ये निरंतर सीखने का प्रयास करना चाहिए कि ये मूल्यवान मनुष्य जीवन ऐसे ही पशुओं के समान गवाने के लिए नहीं मिला है। ये इतनी बड़ी उपलब्धि है कि जिसके द्वारा हम भगवान को अपना बना सकते हैं, भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, जो इतने महान हैं, हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? भगवान भगवद गीता में कहते हैं एक ही माध्यम है भगवान को प्राप्त करने का, और वो माध्यम क्या है? भगवान की सेवा करके। हाँ, क्योंकि सेवा से ही हम आनंद अनुभव करते हैं। माँ अपने पुत्र की सेवा करती है तो उसे आनंद मिलता है। तो उसी प्रकार से यदि आनंद हम ढूंढ रहे हैं तो आनंद प्राप्त होता है सेवा करने से। भगवान के अलावा इस संसार में जिसकी भी सेवा करो वो उससे हम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, या वो लोग हमारी रक्षा नहीं कर सकते। देखो, महात्मा गांधी ने भी देश की सेवा की, देशवासियों ने क्या दिया उनको? अंतिम में गोलियां दी, मार डाला उनको, उनके ही देशवासियों ने। तो इसलिए सेवा यदि करनी है तो वो स्थान हमें ढूंढना चाहिए। तो सेवा करनी है तो सेवा के स्थान कौन है? भगवान है, और भगवान की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि भगवान की सेवा हम करते हैं तो जो आत्मा है वो आनंद की अनुभूति करता है। देखो, किसी आध्यात्मिक स्थान जाते हो, वृंदावन जाते हो, किसी मंदिर जाते हो, तो वह जाने मात्र से आपको क्या महसूस होता है? शांति अनुभव करते हो। क्यों? क्योंकि वो आत्मा से संबंधित स्थान है, क्योंकि वह भगवान की सेवा हो रही है, भगवान का कीर्तन हो रहा है, कथा हो रही है, तो वो आत्मा का भोजन है जिसके द्वारा हम थोड़ा सा शांति या सुख अनुभव करते हैं। और मानो प्रतिदिन हम उसका यदि अभ्यास करते हैं तो क्यों नहीं हम अपने जीवन में सुख और शांति अनुभव करेंगे। कई बार व्यक्ति को लगता है कि ये भगवद गीता पढ़ना ये बूढ़े होने का, बूढ़े लोगों का काम है। कहते अभी तो जवान, इतनी आयु पड़ी है, बुढ़ापा आएगा तो हम मंदिर जाएंगे, बुढ़ापा आएगा तो कथाएं सुनेंगे, भगवद गीता पढ़ेंगे। लेकिन नहीं, बुढ़ापा आने से पूर्व वो करना चाहिए, हाँ, भगवत भक्ति का जो कार्य है। क्योंकि मृत्यु ऐसे नहीं कि बूढ़े को ही आएगी, मृत्यु कभी भी आ सकती है, किसी भी आयु में आ सकती है। इसलिए व्यक्ति को तत्पर होना चाहिए भगवान की सेवा करने के लिए। और सेवा का सरल और सर्वोत्तम उपाय क्या है? अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवादो स्वयमेव स्फुरति यदा। शास्त्र में श्लोक आया है जिसमें कहा गया है कि भगवान की सेवा करने का सरल और सर्वोत्तम उपाय क्या है? जीभ के द्वारा भगवान के नामों का जप करना, उच्चारण करना। भगवान की सेवा शुरू होती है जीभ से। जीवा से हम दो कार्य करते हैं। कौन से दो कार्य करते हैं? एक तो खाते हैं और दूसरा बड़बड़ाते हैं। यदि भगवान के अलावा बोलते रहते हम जो, तो मानो हम मृत्यु को आमंत्रित करते। जैसे मेंढक है, मेंढक बारिश के दिन आते हैं तो ड्राव ड्राव चिल्लाता रहता है, इतना आवाज करता है, और सांप को कहता है कि आओ और मुझे खाओ। तो यदि हम इस जिह्वा का इस्तेमाल भगवान के अलावा चीजों के लिए करते हैं तो मानो हम हमारे मृत्यु को आमंत्रित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मृत्यु को जल्दी आमंत्रित कर रहे हैं। बल्कि हम तो सब लोग एक दिन मरने वाले हैं, लेकिन हम अनुभव नहीं करते। जैसे कसाई के बाहर एक बकरी काट के टंगी होती है और दूसरी बकरी क्या होती है? वहां हरी घास खाती है। लेकिन उस मूर्ख बकरी को नहीं पता अभी मैं हरी घास खा रही हूं, अगला नंबर किसका है? मेरा है। यही तो चीज इस जगत की सबसे बड़े आश्चर्य है। जब ये पांडव लोग वनवास में गए थे तो युधिष्ठिर द्रौपदी को बहुत प्यास लगी और द्रौपदी ने कहा मुझे अभी की अभी पानी चाहिए। आपको पता है श्रीहाट, बालहाट और साधु का हाट, ये बहुत भयानक होते हैं। द्रौपदी ने कहा अभी प्यास लगी है, मुझे अभी पानी चाहिए। पांच पति युधिष्ठिर ने कहा जाओ, पहले वो नकुल सहदेव को भेजा, फिर भीम अर्जुन ये गए वहां जलाशय के किनारे और जल लेने वाले थे तो वहां एक वृक्ष था जिसके ऊपर कुबेर का एक अनुचर यक्ष बैठा हुआ था। उसने कहा मैं जो प्रश्न पूछूंगा उसका उत्तर दो और तब जल दो, यदि नहीं उत्तर दोगे मेरी अवहेलना करोगे तो मूर्छित या मर जाओगे। नकुल सहदेव ने अवहेलना करी, वो मूर्छित होकर गिर पड़े। भीम ने भी वैसे ही किया, अर्जुन ने भी वैसे ही किया, चारों वहां गिरे हुए थे मूर्छित। फिर युधिष्ठिर गया, अरे अभी मेरे भाई गए आया नहीं रहे हैं। युधिष्ठिर जब गए तो देखा कि वृक्ष के ऊपर एक यक्ष है जिन्होंने कहा कि तुम्हारे भाइयों की जो गति हुई है वो मेरी अवहेलना करने के कारण, मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूं उसका उत्तर दे दो, हाँ तो फिर सब ठीक होगा। तो उन्होंने 100 प्रश्न पूछे, महाभारत में 100 प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न था धर्म के, क्या धर्म है, और एक प्रश्न पूछा किम आश्चर्य, ये जगत का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। अभी स्कूलों में तो 9 वंडर्स हमें सिखाते हैं, 9 आश्चर्यजनक चीजें हैं जगत में, है ना। लेकिन जब युधिष्ठिर को यह प्रश्न पूछा तो युधिष्ठिर ने कहा आहनि आहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम् शेष स्थावरम् इच्छन्ति किम् आश्चर्यम् अतः परम्। उन्होंने कहा, युधिष्ठिर कहते हैं इस संसार में जो जीवित व्यक्ति है वो प्रतिदिन देखता है अपने सामने दूसरों की मृत्यु हो रही है। क्या देखते हैं अपने आंखों से, सबकी मृत्यु हो रही है, और उसके पड़ोसी है, मित्रगण है, रिश्तेदार है, माता पिता है, और उस मशान में जाता है उनको लेकर। लेकिन फिर भी उसको कभी यह महसूस नहीं होता कि मैं मरने वाला हूं, नहीं लगता है अरे वो मरेगा, कभी हमें लगता है नहीं। ये वैसी स्थिति उस बकरी की तरह, बकरी घास खा रही है और दूसरी लटकी हुई है वहां, लेकिन ये भूल गए कि अगला नंबर मेरा है। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि ये सबसे बड़ा आश्चर्य है व्यक्ति को, और ये मृत्यु आने से पूर्व व्यक्ति को अपने जीवन में भगवत भक्ति की तैयारी करनी चाहिए, भगवत सेवा की तैयारी करनी चाहिए। और वो भगवत सेवा होती है अपनी जिह्वा के द्वारा। हाँ, सेवा कर सकते, एक है बोलने से और दूसरा है खाने से। तो बोलना है तो भगवान कहते हैं एक चीज का उच्चारण करो जिसके द्वारा तुम इस संसार सागर के भय से मुक्त हो सकते हो और मेरे चरणों की प्राप्ति कर सकते हो। और वो सरल साधन कलियुगा के लिए देते हैं, क्योंकि कलियुगा के लोग इतने एक प्रकार से निकम्मे हैं, उनसे कुछ बहुत बड़ी तपस्या आदि नहीं हो सकती, क्योंकि अलग अलग युगों में अलग अलग विधि होती थी भगवान को प्राप्त करने की। सत्य युगा में लोगों की आयु 1,00,000 साल की थी, इसलिए हम सुनते ना किसी ऋषि ने 60,000 साल तपस्या कर दी, 10,000 साल, क्यों, क्योंकि उनकी आयु कितनी थी सत्य युगा में 1,00,000, जिसमें भगवान को प्राप्त करने की विधि थी ध्यान आदि करना। उसके बाद द्वापर युग आता है, तो द्वापर में भगवान को जो प्राप्त करने की विधि थी वो थी अर्च विग्रह की आराधना करना, भगवान के विग्रहों की स्थापना करना, मंदिरों की, बड़े बड़े मंदिरों की स्थापना करना, पूजा अर्चना करना। और जो त्रेता युग था जिसमें भगवान को प्राप्त करने की विधि क्या थी, यज्ञ आदि करना। हाँ, तो इस कलियुगा में न ध्यान लगा सकते हैं, ध्यान लगाएंगे तो मोबाइल बजता रहता है, आधा ध्यान तो मोबाइल में रहता है, क्या ध्यान लगाएगा कलियुगा का, जो आग बंद करते पता नहीं क्या क्या आता है दिमाग में, तो ध्यान तो लगा ही नहीं सकते ना, यज्ञ कर सकते हैं, क्योंकि यज्ञ के लिए शुद्ध गाय का घी चाहिए, ब्राह्मण योग्य होने चाहिए जो मंत्रों का उच्चारण करें ना, कलियुगा में ब्राह्मण बचे है ना शुद्ध कोई चीज है। तो यज्ञ आदि तो ये केवल छलावा है, दिखावा है, ये तो ढोंग है या धोखा देना है। और ना बड़े बड़े मंदिरों की स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि कोई दान इतना दे नहीं सकता, चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी ना जाए, एक तो कंजूस और उसमें भी मक्खी चूस। एक व्यक्ति के पास घी था, एक मक्खी मंडराते मंडराते घी में गिर गई, जैसे घी में गिरी तो उसने मक्खी को ऐसे उठा लिया, सोचा जब मक्खी ये इसके साथ इतना घी जाएगा वो बाहर, उसने मक्खी को कहाँ डाल दिया, मुंह में घिने जाने दूंगा इसको, इसलिए वो उसको कहते मक्खी चूस, मतलब इतना कंजूस कि उसके साथ घी नहीं चला जाना चाहिए। तो कलयुगा के लोग क्या दान और इतने बड़े बड़े मंदिरों की स्थापना करेंगे, उनसे नहीं होने वाला। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या हिपद्रता, ये मंद भाग्या है इनका, मंद बुद्धि के है। और कलयुगा के लोग थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए लड़ाई झगड़े करेंगे, शास्त्र कहते हैं छोटी सी चीज कुछ हो जाएगी उसमें लड़ाई आदि करेंगे। तो वो क्या करेंगे, उनके लिए क्या विधि है? तो नारद मुनि बहुत चिंतित हो गए लोगों की ऐसी स्थिति को देखकर कलयुगा के, कि ये तपस्या नहीं कर सकते, ध्यान नहीं लगा सकते, यज्ञ नहीं कर सकते, क्या करेंगे अपने जीवन में? तो नारद जाते हैं किसके पास? ब्रह्मा के पास, जिन्होंने ये सृष्टि की रचना की है। ब्रह्मा के पास जाते हैं और ब्रह्मा को कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, बताइए कि कलयुगा के जीवों का उद्धार कैसे हो सकता है, कलयुगा के जीवों का कल्याण कैसे हो सकता है? तो ब्रह्मा जी कहते हैं, इति षोडशकम नामना कलि कलमश नाशनम। तो कई बार कहते कि जो हरे कृष्ण मंत्र आप लोग गाते हो, ये हरे कृष्ण वाले कहां से लेके आ गए हैं? हाँ, ये मनगणन कोई मंत्र है, लेकिन ये हमारा मंत्र नहीं है। ये मंत्र किसका है? शास्त्रों का है। कलि संतरण उपनिषद में ये वार्तालाप होता है ब्रह्मा जी और नारद के बीच में, जिसमें ब्रह्मा जी कहते हैं, यदि षोडशकम नामना, ये 16 अक्षरों का मंत्र, कलि कलमश नाशनम, कलयुगा के सारे कलमशों का नाश कर सकता है। ना तो परतरो उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते, और कोई उपाय नहीं है, सारे वेदों में इसी की गवेषणा, इसी को वर्णित किया गया है। तो उन्होंने कहा कौन सा मंत्र है? तो हिरण्यगर्भ उवाच, ब्रह्मा का नाम है हिरण्यगर्भ। उन्होंने बोला, फिर ब्रह्मा कहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फिर ब्रह्मा ने बोला कि कलयुगा के जीवों के लिए भगवत नाम है। भगवत नाम इतना सरल साधन है जिसका उच्चारण करने मात्र से जीव भगवान को प्राप्त कर सकता है और अपना जो जीवन है हाँ उसमें वो सुखी हो सकता है और संपन्न हो सकता है। हाँ, यही सबसे बड़ा धन है। इसलिए जब मृत्यु आएगी, मृत्यु के बाद हमारे साथ कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। एक बार एक नई नई एक की शादी हुई थी, वो एक साधु के पास गया और साधु ने कहा, मंदिर में रह जाना, तुम अभी सेवा कर लेना। कहता है, नहीं, मेरे घर वाले बहुत प्रेम करते हैं मुझसे, मेरी पत्नी, मेरे ना रिलेटिव, मेरे माता पिता, भाई बहन सब। अच्छा, वो कहते, मैं अभी बताता हूं आपको कौन आपसे सही में प्रेम करता है। हाँ, तो जब कुछ का ऐसा कारण बनाया कि वो जो व्यक्ति है वो मूर्छित हो जाता है और सारे घर वाले आते हैं, साधु कहता है कि ये तो मर गया है, इसको मैं जीवित कर सकता हूं, बताओ आप में से कौन इसकी जगह मरने के लिए तैयार है? सोचो, साधु तो कहता, आप भी मंत्र बोलूंगा ये उठ जाएगा, बोल आप में से कौन तैयार है? अभी वो तो सुन रहा था सारी बातें, हाँ कौन असली प्रेम करता है? तो फिर सबसे पहले बोला कि देखो, उसकी माँ को बोला कि आप तो अभी हो ही गए, जीवन तो पूरा जी लिया है, खत्म हो गया, बुढ़ापा आ गया है, अभी बेटे को कुछ करने दो, तुम मर जाओ। कहते, नहीं नहीं, मेरा अभी भी बचा, और मेरे जो पति है वो खांसते रहते हैं, वो बूढ़े हो गए, उनकी सेवा कौन करेगा? अभी उसको पति की सेवा की याद आ गई। और मैं नहीं, किसी और को बोलो। तो ऐसे सबको बोला, अलग अलग सबने कारण बताए, पत्नी को भी बोला, पत्नी ने भी दो हाथ ऊपर कर दिए, कहते नहीं, संभव नहीं है। फिर उसको तो साधु कहता, मैं मरने के लिए तैयार हूं, इसके लिए इसको जीवित करता है। सब कहते, अच्छा है, आपके आगे पीछे कोई नहीं है आप चले जाओ। हाँ, तो व्यक्ति उठ जाता है और वो समझ लेता है कि वास्तव में इस संसार में सबसे अधिक प्रेम कोई किसी से करता है तो किससे करता है? अपने से करता है। हाँ, इसलिए वास्तव में ये जो जगत है,
किसी कारण से हमारे लिए नहीं बनाया गया। एक बार एक विदेशी व्यक्ति भारत आता है और घूम घूम के एक साधु की कुटिया उसने देखी और ऐसे कुटिया के अंदर ऐसे झांका और कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? साधु कहते, आइए आइए। और कहते, मेरे पास ना एक प्रश्न है, मैं पूछूं आपसे प्रश्न? साधु कहते, पूछिए। कहते, मैं देख रहा हूं कब से आपको, साधु को बोल रहा था विदेशी व्यक्ति, कब से देख रहा हूं आपकी इतनी छोटी सी कुटिया है, आप कैसे रहते हो, इसमें कोई फर्नीचर नजर नहीं आता आपका, फर्नीचर कहाँ गया? अभी साधु के पास काहे का फर्नीचर? वो कहता है, साधु कहता है कि मैं यहाँ टूरिस्ट हूं। क्या हूं मैं यहाँ? हाँ, तो वो उसको पूछता है, फिर तुम आए हो, तुम्हारा फर्नीचर कहाँ है? तो वो विदेशी व्यक्ति भी क्या बोलता है, मैं क्या हूं यहाँ, टूरिस्ट हूं, और मेरा फर्नीचर उस जगह है जहां मैं परमानेंट निवास करता हूं। साधु ने भी वही बोला कि मैं भी टूरिस्ट हूं और मेरा फर्नीचर भी कहाँ है? परमानेंट, जहां भगवान निवास करते वहां फर्नीचर है मेरा, भगवान के धाम में। मतलब कहने का तात्पर्य है कि ये जगत हमारे लिए नहीं है और ये जगत की कोई भी वस्तु हम अपने साथ लेके जा नहीं सकते। एक सुई लेके जा सकते हो जब शरीर छोड़ते हो? नहीं, एक एक चीज लेके जा सकते हो, जितना आपने भगवान की सेवा की है, भगवान का नाम उच्चारण किया है, वो अपने साथ आ सकता है। बाकी सब लोग, शास्त्र में एक उदाहरण है कि जो पत्नी है, नारी ग्रह द्वारे, जब व्यक्ति मरता है तो स्त्री घर के दरवाजे तक आती है, सुता स्मशाने, मित्रगण परिवारिक सब लोग स्मशान तक आते हैं, देह चिताया, ये शरीर कहां तक आएगा जिससे पूरा जीवन प्रेम कर लिया, कहां तक आएगा? चिता। और फिर कहते हैं परलोक मार्गे एकम गच्छति, अकेला फिर क्या करता है, जाता है। तो क्या लेके जाता है? तो वहां कहते हैं अपने कर्मों को साथ लेके जाता है, चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, तो साथ लेके जाना है। तो एक चीज हम लेके जा सकते हैं, भगवान की सेवा या भगवान का नाम कितना अपने भक्ति पूर्वक किया है, वो हम हमारे साथ ले जा सकते हैं। तो इसलिए आप सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हो। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं मनुष्यानाम सहस्रेशु, हजारों हजारों में से कोई एक व्यक्ति मेरी ओर आने की इच्छा करता है और उसमें से भी कुछ लोग को मौका मिलता है मेरे भक्तों के सहचर्य में आकर मेरे बारे में श्रवण कीर्तन करने का और सेवा करने का। तो इसलिए आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, आप बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि मनुष्य जीवन मिला और वो भी कहां मिला? भारत में। ऐसा वर्णन आता है पुराणों में कि देवतागण ऊपर से सोचते हैं ये भारत भूमि में हम कैसे जन्म लेंगे, और वो भी उससे भी और बड़ा भाग्य क्या है, आप यहाँ वृंदावन से नंदी निवास कर रहे हो, हाँ हरियाणा में। ये हरियाणा नाम क्यों पड़ा जानते हैं आप सब? क्योंकि हरि, भगवान हरि आते रहते थे हरियाणा, हाँ, द्वारका से या मथुरा से पांडवों से मिलने के लिए इस रास्ते से गुजरते थे, इसलिए हरियाणा है। तो यदि आप अपना लाभ जीवन का उठाना चाहते हैं तो निरंतर भक्तों के संग में आइए और यहाँ श्रवण कीर्तन का लाभ उठाइए। इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने अपने 70 साल की आयु में इस संस्था की स्थापना की थी 1965 में अमेरिका में। तो इस्कॉन जो प्रभुपाद जी हैं, वो अपनी युवा अवस्था में सुभाष चंद्र बोस के साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे कोलकाता में। तो वो अपने आध्यात्मिक गुरु से एक दिन मिले और उन्होंने कहा, तुम तो युवक हो, तुम अंग्रेजी अच्छी जानते हो। कहते कि क्यों नहीं, ये भगवत भक्ति का, गीता भागवत आदि का प्रचार अंग्रेजी भाषा में विदेशों में क्यों नहीं करते, सब लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए। तो उन्होंने अपने 70 साल की आयु में, इतने वृद्ध हो गए थे, 70 साल की आयु में उनके पास कुछ धन नहीं था, 40 रुपए थे, 40 रुपए को लेकर अमेरिका गए, ना रहने का ठिकाना ना किसी चीज का ठिकाना, लेकिन भगवान पर बहुत श्रद्धा थी। भगवान आप मुझे इतने दूर आए हो, जब अमेरिका गए तो उन्होंने कविता लिखी जिसमें उन्होंने कहा, कृष्णा आप मुझे भारत से इतना दूर लाए हो, जरूर मुझसे आप कुछ करवाना चाहते हो। तो उन्होंने भारत से वहां पहुंचे तो यही भगवद गीता, भागवत और हरिनाम का कीर्तन किया और सारे लोगों को भगवान का भक्त बनाया और सबको क्या किया कि भगवत भक्ति का लाभ प्रदान किया। तो आप सबसे यही निवेदन है कि आप हर संडे होगा प्रभु ना, तो हर संडे प्रोग्राम होगा, तो आप इसमें आते रहिए और भगवान के भक्तों का कीर्तन कथा आदि का लाभ उठाते रहिए। हरे कृष्णा। तो अपने दोनों हाथ ऊपर कीजिए, बोलिए मेरे पीछे जोर से, हरे कृष्णा,
हरे
कृष्णा, कृष्णा
कृष्णा,
हरे
हरे,
हरे राम,
हरे
राम,
राम
राम,
हरे
हरे,
हरे
नाम संकीर्तन के। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते या तो फिर हम फिर कीर्तन करेंगे खड़े होकर। हरे कृष्णा। तो आप सब लोग खड़े हो जाइए, चेयर्स को साइड में कर दीजिए। Thank you.